काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय ग्रंथालय में ध्वन्यांकित पुस्तक श्री मम्मटाचार्य प्रणीत काव्य प्रकाश श्रीमन महामहेश्वराचार्य कृत प्रकाशक परिमल पब्लिकेशंस 27/28 शक्ति नगर दिल्ली 110007 भारत। वाचिका नेहा श्रीवास्तव के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया जाता है क्योंकि यह पुस्तक दृष्टिहीन छात्रों के लिए विशेष उपयोगी है। श्री गणेशाय नमः। काव्य प्रकाश यस्या कृपा कटाक्षेण स्पंदते निष्क्रियं जगत् ताम वंदे मातरम वाचाम रमणीयाम अर्थभूषिताम। वाग देवता अवतारस्य मम्मटस्य कृताविह भूमिका कल्पना नल्प जल्प नैव विभाति मे प्रयासः सहसा यो अयमल्पज्ञस्य ममोऽपि यत् सेवाधिकार एवायं मन्यताम धीघनैरिह। संस्कृत वाङ्मय भारत का ही नहीं अपितु यह विश्व की एक अमूल्य निधि है। इस वाङ्मय के अनंत रत्नों की आभा से कभी यह निखिल भूमंडल प्रकाशित था, जिनकी मंद मंद कुछ धूमिल किरणें आज भी सुदूर देश देशांतर को आलोकित कर रही हैं। भारत ही प्राधान्येन इस अमृत कल्प वाङ्मय की उत्स भूमि रही है, क्योंकि इसी के अरुण प्रकाश से प्रकाशित प्रांजल प्रांगण में महर्षियों ने सर्वप्रथम सामगान किया था। शनह शनह इसके स्वर महाकाश के मध्य गूंजते हुए यत्र तत्र सर्वत्र ही दिव्य संदेश देते रहे। परमपिता परमेश्वर के विश्वास स्वरूप वेद इसी वाङ्मय की दिव्य विभूति हैं, जहाँ से निरंतर निगमागम की अजस्त्र धारा प्रवाहित हो रही है। वेद ही आर्य जाति के अमर काव्य हैं, जिनके विषय में कहा है, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। संस्कृत वाङ्मय संबंधी आगम निगमादि शास्त्र प्रस्थान व सिद्धांतों की जितनी भी शाखा प्रशाखाएं हैं, वे सभी इसी वेद कल्पतरु के ही विवर्त हैं। मनुष्य जीवन के समृद्धि सुख शांति व समुन्नत करने की जितनी भी विद्याएं हैं, वे सब वेदों में वर्णित हैं। धर्म अर्थ काम व मोक्ष चारों पुरुषार्थों का संपादन कराने वाले सुंदर साधनों का यहाँ मनोरम वर्णन है। कहने का तात्पर्य है कि जीवनोपयोगी किसी भी विद्या या कला का कोई अंग कोई अंश ऐसा नहीं है जिसका यहाँ वर्णन न किया हो। पुरुषार्थ चतुष्टय संबंधी जिन उपायों का वेद में वर्णन पाया जाता है, वे शास्त्र सरणी में परिष्कृत किए हुए प्रस्थान अति गहन सूक्ष्माति सूक्ष्म उहापोह से परिपूर्ण व तर्क कर्कश होने से अत्यंत दुरूह हो गए हैं। इस कठिन मार्ग से लौकिक पुरुषार्थ त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम तक प्राप्त करना ही जहाँ कठिन है, वहाँ परम पुरुषार्थ मोक्ष तक की पहुँचने की तो फिर चर्चा ही क्या। सुकुमार मति भी अनायास ही चारों पुरुषार्थों को जिससे प्राप्त कर सके, ऐसे वाङ्मय के इस ललित अंश का नाम साहित्य शास्त्र या काव्य मार्ग है। पुरुषार्थ चतुष्टय के सरलतया संपादन में यही काव्य मार्ग अत्यंत उपादेय प्रतीत होता है। अन्य शास्त्रीय उपाय इसकी अपेक्षा कठिन श्रमसाध्य व दुरूह होने के कारण सुकुमार मति वालों के अनुष्ठान के योग्य नहीं है। अतएव काव्य की उपादेयता को ध्यान में रखते हुए साहित्य दर्पणकार श्री विश्वनाथ कविराज का यह कथन भी युक्ति युक्त है। चतुर वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की तरह आचरण करना चाहिए, न कि लंकाधिपति रावण की तरह। इस तरह कृत्य में प्रवृत्ति तथा अकृत्य से निवृत्ति कराने के लिए काव्य के कांता सम्मित उपदेश सर्वत्र प्रसिद्ध ही हैं। इसी प्रकार चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति के विषय में भी यही कहा जा सकता है कि परिनिष्ठित प्रौढ़ बुद्धि वाले भले ही बड़े अध्यवसाय पूर्वक वेदादि शास्त्रों से उक्त फल को कथनचित प्राप्त कर ले, पर सरल तथा सुकुमार मति वालों के लिए तो यह कार्य अत्यंत ही दुष्कर है। फिर जब एक सरल मार्ग का निर्माण उक्त गंतव्य स्थान की प्राप्ति के लिए हो चुका है, तो कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो दुष्कर गहन व कठिन मार्ग की शरण लेगा। कड़वी औषधि के द्वारा शमनीय रोग यदि मीठी औषधि से भी शांत हो जाता है तो कहना न होगा कि रोगियों की प्रकृति मीठी औषधि के लिए ही होगी। इसलिए अग्निपुराण ने भी ऊंचे स्वर से काव्य की उपादेयता का उद्घोष किया है। नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभा। सर्वप्रथम इस संसार में प्रकृष्ट सत्व समनस यूत मानव जीवन ही मिलना मुश्किल है। जन्म जन्मांतरों के परिणत पवित्र संस्कारों के परिपाक जन्य पुण्य संचय के द्वारा ही प्राणी मानव जीवन को प्राप्त करता है। उसमें भी मानवता की संपादिका विद्या शास्त्र ज्ञान को प्राप्त करना और भी कठिन है। अध्ययन भी एक प्रकार का तप माना जाता है। अनेक प्रकार के संयम नियमों का पालन कर कठिन परिश्रम से शास्त्रों का चिंतन करते हुए विद्यार्थी विद्याधिष्ठात्री देवी सरस्वती की उपासना करता है, तब किसी प्रकार विद्वान बनता है। अतः विद्या भी सर्वसाधारण सुलभ नहीं है, इसलिए इसे दुर्लभ कहा है। किसी प्रकार विद्या प्राप्त भी हो जाए तो कवि बनना तो और भी कठिन है। साधारण वृत्त पादतुक आदि का नियमानुसार पद्य बंधन कार्य ही जब मुश्किल है तो फिर कवित्व शक्ति प्रतिभा के विषय में तो क्या कहना। अर्थात कवित्व शक्ति तो पूर्व जन्म के असाधारण परिपक्व सुसंस्कारों के परिणाम स्वरूप कोई पवित्र ही प्रसाद है जो जन सामान्य के लिए सुलभ नहीं है। इस प्रसंग में ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंद वर्धनाचार्य की यह उक्ति सर्वथा युक्ति युक्त मालूम पड़ती है कि प्रतिभा शक्ति संपन्न महाकवि तो अंगुली गणनीय दो तीन ज्यादा से ज्यादा पांच छह ही होंगे। ये नाति विचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे कालिदास प्रवृत्तयो वित्राह प्रपंच शा वा महाकवियो इति गण्यते। कवि अपने लोकोत्तर प्रतिभा के द्वारा निरस प्रस्तर पाए इस जगत के पदार्थों को सरस तथा सजीव बना देता है, किंच अपनी अलौकिक कविता द्वारा ही प्रपंचाभिमुख मानव के भोगापवर्ग के निमित्त प्रवृत्ति निवृत्ति स्वरूप उभयविध मार्गों को प्रशस्त कर परम पुरुषार्थ के उस महनीय प्रसाद के प्रांगणाभिमुख बना देता है। इसी हित को लक्ष्य करके मनुष्यों ने काव्य मार्ग को साहित्य कहा है। इस शब्द की व्युत्पत्ति से भी यही अर्थ प्रतीत होता है। यथा हितेन निरतिशय प्रेमास्पदेन रसेन सहितम इति अथवा हितम पीहितम आवृत्त सन्निहितम यस्य तत्सहितम तस्य भाव साहित्यम उक्तं चापि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम इत्यादि। यह साहित्य सदुपदेश का विधायक या शासक होने के कारण शास्त्र भी है, अतः यह भी काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र के नाम से पुकारा जाता है। उपमेय की प्राप्ति का मनोरम साधन होने के कारण ही संगीत व साहित्य को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के दो स्तनों की तरह माना है, जिनमें अमृत वांग मधु निस्पंदन होता रहता है, जिसका पान कर मनुष्य अमर हो जाता है। संगीतम अथ साहित्यम सरस्वत्याह स्तनद्वयम् एक मा पात मधुर मन्यदालोचनामृतम्। संगीत जहाँ आपाततः श्रवण मात्र से रमणीय है, वहाँ साहित्य आलोचना से चर्वित होकर आस्वादितिरेक समर्पण करता है। सच भी यही है कि किसी साहित्य की सुंदर कसौटी आलोचना ही है। बिना आलोचना के काव्य के न तो गुण का परिचय मिल सकता है और न उसके दोषों का ही ठीक ठीक पता चलता है। गुण दोषों के बिना जाने काव्य के वास्तविक आनंद का आस्वादन नहीं हो सकता है। इसलिए काव्य के वैशिष्ट्य को समझने के लिए आलोचना की महती आवश्यकता है। आलोचक ही काव्य के मर्म को समझने में सफल होता है। कभी कभी तो आलोचक कुछ ऐसे भावों को समझाता है जो कवि की दृष्टि से भी ओझल रहते हैं। इसी प्रकार आलोचना भी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। आलोचक का पद भी कवि से कथमपि न्यून नहीं है, न संस्कृत साहित्य में इसकी अपेक्षा ही है। आलोचक की अपेक्षा रखते हुए संस्कृत साहित्य के मान्य आचार्य राजशेखर ने तो आलोचना शास्त्र को वेद का सप्तम अंग माना है। उपकार कत्वादलंकार सप्तमंगम इति याया वरीयः रिते च तत्स्वरूप परिज्ञानाद् वेदार्थ नव गति ही यथा। द्वा सुपर्णा सैजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्लम स्वाद्वत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। राजशेखर की सम्मति में बिना अलंकार शास्त्र के जाने वेद के अर्थ का ज्ञान अच्छी तरह हो ही नहीं सकता। इस प्रकार यह शास्त्र वेदांग के समान ही उपयोगी तथा उसी के समकक्ष माना जाता है। उक्त द्वा सुपर्णा सहिजा इत्यादि मंत्र में ईश्वर जीव और प्रकृति इन तीन अनादि अनंत मौलिक तत्वों का वर्णन है। यहाँ इन तीन तत्वों का निरूपण अपने नामों से न ग्रह कर रूप कातिशयोक्ति द्वारा दो पक्षियों और एक वृक्ष के रूप में प्रदर्शित किया गया है। प्रकृति एक विशाल पिप्पल वृक्ष के रूप में है। ईश्वर और जीव दोनों सुंदर पंखों वाले और साथ साथ रहने वाले मित्र रूप पक्षी हैं। वे दोनों पक्षी समान वृक्ष अर्थात प्रकृति पर स्थित हैं। उन दोनों में से एक जीव उस वृक्ष के फलों को खाता है अर्थात जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार संसार में सुख दुख रूप फलों का भोग करता है और दूसरा पक्षी अर्थात परमात्मा फलों का भोग न करता हुआ संसार में चारों ओर अपने सौंदर्य को प्रकाशित करता है। यही इस मंत्र का भावार्थ है। वैदिक ऋषियों की रूप कातिशयोक्ति की यह कल्पना अत्यंत रमणीय है। इसके साथ सुपर्णा सहिजा सखाया समानम परिशस्व जाते के सुंदर अनुप्रास ने तो सोने में सुगंध का काम किया है। अनश्न अभिचाक सीति में नकार का अनुप्रास माधुर्य की अभिव्यंजना कर रहा है। फल का भोग न करते हुए भी अपने तेज को प्रकाशित कर रहा है। यह विभावना अलंकार का सुंदर उदाहरण है। न केवल अलंकार ही उक्त मंत्र को अलंकृत कर रहा है अपितु सयुजा सखाया ये विशेषण पद द्योत्य ध्वनि के भी अभिव्यंजक हैं। इन पदों से जीवात्मा तथा परमात्मा की नित्यता एवं सच्चिद रूपता की भी अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार के मंत्रों में साहित्य शास्त्र के अनेक मौलिक तत्वों का सुंदर समावेश हुआ है। इसलिए वेद से लेकर व्यवहार तक साहित्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र भी उतना ही उपयोगी है जितने अन्य शास्त्र। अतः राजशेखर की यह उक्ति भी अत्युक्ति नहीं है कि काव्य सभी विद्याओं का विश्राम धाम है। कवि कल्पना प्रसूत होते हुए भी हितोपदेशक होने से वह शास्त्र है। सकल विद्या स्थानैकायतनम पंचदशम काव्यम विद्यास्थानम इति आयावरीय गद्य पद्यमयत्वात् कवि धर्मत्वात् हितोपदेशकत्वात् च तद्धि शास्त्राणि अनुधावति। अलंकार इस नाम का निदान। आलोचना के लिए संस्कृत साहित्य में अनेक नामों का प्रचलन प्राचीन काल से होता आया है। इसका प्राचीनतम नाम क्रियाकल्प प्रतीत होता है। वात्स्यायन ने 64 कलाओं के भीतर क्रियाकल्प को भी एक विशिष्ट कला माना है। क्रिया का अर्थ काव्य ग्रंथ और कल्प का अर्थ विधान। इस प्रकार काव्य के विधायक शास्त्र होने से इसका यह नाम सार्थक ही है, पर यह नाम आगे प्रसिद्धि नहीं पा सका। इसी प्रकार दशम शती के प्रारंभ में राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में इसका नाम साहित्य विद्या रखा। पंचमी साहित्य विद्या इति यायावरीय साहि चतस्री रामपि विद्यानाम निस्यंदह इति। इसको चारों वेदों का सारभूत माना है, परंतु साहित्य विद्या विधा यह नाम भी आगे प्रचलित न हो सका। काव्य के सौंदर्य का परीक्षण करने वाले इस आलोचना शास्त्र का संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम अलंकार शास्त्र है और इस आलोचना या काव्य की सौंदर्य समीक्षा के अभिज्ञ को अलंकारिक कहा जाता है। यद्यपि यह शास्त्र केवल अलंकार पर ही विचार न करके काव्य की सभी विद्याओं गुण दोष रस रीति व ध्वनि आदि पर प्रकाश डालता है। अलंकार तो काव्य के अनेक शोभादायक तत्वों में से अन्यतम है। वह भी स्वरूपाधायक न होकर केवल उत्कर्षाधायक ही माना है। काय शोभाकारान धर्मालंकारान प्रचक्षते दंडी के ये वचन भी इस बात की पुष्टि करते हैं। पर यहाँ अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः इस संकीर्ण अर्थ में नहीं हुआ है, अर्थात काव्य केवल उत्कर्षाधायक तत्वों के लिए न होकर अलंक्रियते इति या अलंकृतर अलंकारः इस व्यापक अर्थ में यहाँ अलंकार शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्थात काव्य के यावत सौंदर्याधायक तत्व अलंकार को इस व्यापक अर्थ में लाने का श्रेय आचार्य वामन को है। उनकी दृष्टि में अलंकार शब्द तथा अर्थ को बाह्य शोभा का वर्धक भूषण मात्र नहीं है, प्रत्युत काव्य का मूल तत्व है। वामन का प्रसिद्ध सूत्र है सौंदर्यम अलंकार, अर्थात सौंदर्य ही अलंकार है। काव्य में सौंदर्य के आधायक जितने भी तत्व हैं, उन सब का सामान्य अभिधान अलंकार है। फलतः अलंकार शास्त्र का अर्थ है काव्य के सौंदर्यधायक तत्वों का प्रतिपादक शास्त्र। इसी व्यापक रूप में इसका अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अलंकार शब्द के सौंदर्य परक अर्थ पर टिप्पणी करते हुए काव्य अलंकार सूत्रों के व्याख्याकार श्री गोपेंद्र तिपुरहर भूपाल ने भी पूर्वोक्त पक्ष की ही पुष्टि की है। यद्यपि काव्यम ग्राह्य सौंदर्यात तद्दोष गुणालंकार हानो दानाभ्याम इति विन्यासांतरे लाघवम भवति, तथापि यो अयम अलंकार काव्य ग्रहण हेतु त्वेनोपमन्यस्यते तद्व्युत्पादकत्वाच्छास्त्रम् अलंकार नामना व्यपदिश्यते इति शास्त्रस्य अलंकारत्वेन प्रसिद्धि प्रतिष्ठिता स्यादिति सूचयितुं विन्यासः कृतः। काव्यम ग्राह्यम अलंकारादिति अथवा प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, इस न्याय के अनुसार रस रीति दोष गुणों का प्रतिपादक होने पर भी यमक उपमादि अलंकारों की प्रचुरता के कारण इन्हीं से काव्य का व्यवहार होने लगा, अर्थात अलंकारों की प्रधानता के कारण इस समय अलंकार ही काव्य व्यवहार के प्रयोजक हो गए। काव्य वृत्ते तदाश्रयात इस ध्वनिकार की उक्ति से भी इस बात की पुष्टि होती है कि अलंकारों में ही काव्य व्यवहार की प्रयोजकता है। साहित्य शास्त्र के प्रारंभिक युग में अलंकार ही काव्य का सर्वस्व माना जाता है। यद्यपि ध्वन्यमान अर्थ रस रीति आदि भी काव्य के जीवनाधायक तत्व विद्यमान थे, परंतु आनंद वर्धनाचार्य के पहले उन तत्वों की स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। अतः भट्टोद्भट्ट रुद्रट दंडी आदि प्राचीन अलंकारिक ध्वन्यमान अर्थ को भी वाच्य का उपस्कारक मानकर काव्य में अलंकारों की ही प्रधानता मानते थे और अलंकार तत्व को ही काव्य व्यवहार का प्रयोजक मानते थे। जब अलंकार ही एकमात्र काव्य का आशय है तो उसके विवेचक या प्रतिपादक शास्त्र का नाम भी अलंकार शास्त्र होना स्वाभाविक है। साहित्य शास्त्र के इतिहास में करीब नवम शतक के मध्य भाग का काल स्वर्णाक्षरों से उल्लेखनीय है। साहित्य की इस शुभ वेला में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। काव्य की गहरी मीमांसा करने पर ध्वनि तत्व का आविर्भाव हुआ, इसका श्रेय आचार्य आनंद वर्धन को है। ये ही ध्वनि मार्ग के प्रवर्तक हैं। इन्होंने ध्वनि तत्व की प्रतिष्ठा करके काव्य क्षेत्र में एक नई धारा बहाई जो ध्वनि संप्रदाय के नाम से प्रख्यात है, और इसका तात्विक विवेचन इन्होंने अपने युगांतरकारी ग्रंथ ध्वनियालोक में किया। इसी ग्रंथ में इन्होंने बड़े संरभ के साथ प्रतीयमान अर्थ की काव्य में पृथक सत्ता सिद्ध की। आनंद वर्धन का महत्व इसी में है कि उन्होंने अपनी अलौकिक मनीषा के द्वारा काव्य में प्रतीयमान तत्व को काव्यांगों से पृथक स्वतंत्र कर दिया। यही से काव्यांगों का उचित मूल्यांकन हुआ, विशेषतः इस अलंकार व गुणों को उनके उचित स्थान पर प्रतिष्ठित किया। अब काव्य में अलंकार व अलंकार के विषय में भी विशेष विवेचन होने लगा। फलतः अलंकार को काव्य साम्राज्य के उच्च सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर अलंकारों को उनका उत्कर्षाधायक अंग माना गया। आलोचक धीरे धीरे काव्य के इस महत्वपूर्ण तत्व से परिचित होने लगे। ध्वनि की काव्य की आत्मा के रूप में उद्घोषणा हो गई। तदनंतर ध्वनि के व्याख्याता आचार्य अभिनव गुप्त ने अपनी व्याख्या द्वारा ध्वनि प्रसाद की चार दीवारी को मजबूत किया। मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में सदा के लिए इस सिद्धांत की पूर्ण रूप से स्थापना की। इसी से इनको ध्वनि प्रस्थापक परमाचार्य की पदवी मिली। सत्रहवीं शताब्दी के अंतिम आचार्य पंडित राज जगन्नाथ हैं, जिनकी कृति रस गंगाधर ध्वनि संप्रदाय का नितांत परिपोषक प्रौढ़ ग्रंथ है। वे आनंद वर्धन के सिद्धांत से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने ध्वनिकार को अलंकारिकों की सरणी का व्यवस्थापक होने का गौरव प्रदान किया। ध्वनिकृतामालंकारिक सरणी व्यवस्थापकत्वात्। इस प्रकार उत्तरोत्तर साहित्य क्षेत्र में गहरी छानबीन होने लगी। रस, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि अनेक काव्य तत्वों का उदय होने लगा। ध्वनि, वक्रोक्ति आदि के विषय में एक तरफ से विरोध भी चलता रहा, पर उस काव्य की आत्मा पर रस काव्य की आत्मा है, इसके विषय में किसी की भी प्रतिपत्ति नहीं थी। अष्टम उल्लास में मम्मट ने भी ये रसस्यांगिनो धर्मा कहकर गुण और अलंकार को साक्षात और परम्परया रस के उत्कर्ष माना और रस को काव्य की आत्मा माना। इस प्रकार तात्विक दृष्टि से तो इस शास्त्र का नाम रस शास्त्र या ध्वनि शास्त्र होना चाहिए था, परंतु पूर्व प्राचार या प्रसिद्धि के कारण अथवा काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में अलंकारों को प्रचुर परिमाण या व्याख्यान को देखते हुए प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, इस न्याय से इस शास्त्र का नाम अलंकार शास्त्र पड़ा। अर्थात साहित्य शास्त्र के आदि युग में अलंकारों की ही महिमा व्याप्त थी, इसका अलंकार शास्त्र इस नामकरण का यही रहस्य है। काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट। संस्कृत साहित्य शास्त्र की समाराधना में जिन यशस्वी मनीषियों ने अपना जीवन समर्पण किया है, उनमें आचार्य मम्मट का नाम उल्लेखनीय है। भरत से लेकर भोजराज तक लगभग 1000 वर्ष के बीच काव्य शास्त्र पर जितना चिंतन मनन व उहापोह पूर्ण समालोचना हुआ था, उन सभी साहित्य बिंबों का संक्षेप में प्रतिबिंब हमें आचार्य मम्मट की कृति काव्य प्रकाश में स्पष्ट रूप से मिल जाता है। इतने लंबे अरसे में साहित्य समालोचना के क्षेत्र में विभिन्न दृष्टिकोणों से जितना मंथन हुआ था, उसका सार रूप नवनीत काव्य प्रकाश है। मम्मट का कार्य उन मधुमक्खियों की तरह है जो निरंतर अनेक उद्यानों के पुष्पों से परिश्रम पूर्वक मधु चयन कर पुनः उस मधु को अपने छत्ते में सजाकर रख देती हैं। मम्मट ने विभिन्न आचार्यों की काव्य वाटिकाओं के पुष्पों में शब्द, अर्थ, दोष, गुणालंकारों का परिशीलन कर तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापी। तत्तत् पुष्पों में बिखरे हुए इन मधुबिंदों को कलात्मक ढंग से दश उल्लासों में संभाला है तथा सुरक्षित रखा। इधर नवम शताब्दी के मध्य भाग में ध्वनि सिद्धांत की काव्य क्षेत्र में पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। काव्य लोचन में अलंकार तथा अलंकार का यथावत विभाग कर दिया गया। गुण व अलंकार का भी परस्पर विवेक पूर्ण विभाग हो चुका था। गुण काव्यात्मा रस के नित्य धर्म तथा आभ्यांतर और अलंकार रस के अनित्य धर्म वाह्य शोभादायक तत्व माने गए। ये दोनों ही साक्षात और परम्परया काव्यात्मा के उपस कारक माने गए। ध्वनि सिद्धांत की इस प्रकार व्यापक व्यवस्था होने पर भी कुछ कश्मीर के मान्य अलंकारिक को यह सिद्धांत सर्वतोभावेन मान्य नहीं हुआ। इस आंदोलन के सर्वप्रथम नेता वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कुंतक थे। इन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा व प्रखर मेधा के द्वारा काव्य के मूल सिद्धांतों का सर्वथा नवीन रूप में पुनराख्यान किया और ध्वनि सिद्धांत के उद्भावक आनंदवर्धन की सार्वभौम प्रतिष्ठा को ललकारा। निर्मूलत्वादेव तयोर्भावा भावयोरिव न कथंचिदपि साम्योपपत्तिरित्यल मनुचित विषय चर्वणाचातुर्य चापल्येन। अर्थात भाव और अभाव के समान उन दोनों क्षिप्तौ हस्तावलग्न इत्यादि पद्यों में कोष्ठक कामी तथा शराग्नि के सादृश्य कोष्ठक बंद के निर्मूल होने से उन दोनों के साम्य का किसी प्रकार भी उपादान नहीं हो सकता। इसलिए अनुचित विषय के समर्थन में चातुर्य दिखलाने का प्रयत्न व्यर्थ है। इसी साहसपूर्ण मौलिक विवेचन के कारण कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत केवल सिद्धांत न रहकर संप्रदाय बन गया, पर ध्वनिवादी आचार्यों ने आगे इस पर विशेष ध्यान न देकर केवल वक्रोक्ति लंकार रूपत्वात कहकर ही संतोष कर लिया। इसके बाद 11वीं शती के मध्य में कश्मीर निवासी आचार्य महीभट्ट के द्वारा ध्वनि का प्रबल विरोध हुआ। महीभट्ट मूलतः नैयायिक थे। इन्होंने व्यक्ति विवेक नामक अपने प्रौढ़ ग्रंथ में ध्वनि तथा व्यंजनावृत्ति का बड़े जोरदार शब्दों में खंडन किया। इनका कहना था कि ध्वनि नामक कोई पृथक वस्तु नहीं है, अपितु अनुमान का ही एक प्रकार है। इसी की सिद्धि के लिए इन्होंने इस ग्रंथ में अपने उत्कट पांडित्य का प्रदर्शन किया है। मंगलाचरण में ही वे ग्रंथ निर्माण का उद्देश्य बतलाते हुए कहते हैं, अनुमाने अंतर्भावम सर्वस्यैव ध्वनः प्रकाशयितुम् व्यक्ति विवेकम कुरुते प्रणम्य महिमा पराम वाचम। सभी प्रकार की ध्वनियों का अनुमान में ही अंतर्भाव दिखलाने के लिए महिमा नामक आचार्य परावाणी को प्रणाम कर व्यक्ति विवेक की रचना करते हैं। इन्होंने आनंद वर्धनाचार्य के ध्वनि लक्षण का प्रतिपद खंडन कर यह दिखलाने की चेष्टा की है कि यह ध्वनि का लक्षण तो बन ही नहीं सकता है, अपितु विचार पूर्वक देखा जाए तो यह अनुमान में ही संगत होता है। एतच्च विविच्यमान मनुमानस्यैव संगच्छते नान्यस्य व्यक्ति विवेक। इस प्रकार ध्वनि के सभी प्रकारों का प्रौढ़ तर्कों द्वारा खंडन कर तृतीय विमर्श में ध्वन्यालोक के ध्वनि सिद्धांत की कठोर समीक्षा करता हुआ लगभग 40 उदाहरणों की परीक्षा कर उन्हें अनुमान में ही गतार्थ कर दिया। सचमुच अपनी प्रौढ़ प्रतिभा के महिम भट्ट ने एक बार तो ध्वनि सिद्धांत को सदा के लिए मिटा देना चाहा और ध्वनि सिद्धांत के स्थान में अनुमतिवाद को सुप्रतिष्ठित कर देना था। ध्वनि की प्रतिष्ठा की स्थापना का यह सारा भार मम्मट जैसे महिमाशाली आचार्य पर था। मम्मट ने अनुमितिवादी तथा अन्य ध्वनि विरोधियों का जब एक बार मुंहतोड़ उत्तर दे दिया तो फिर ध्वनि के विषय में आगे किसी को विरोध करने का साहस नहीं हुआ। आचार्य मम्मट के कड़े हाथों से ध्वनि संप्रदाय की सुप्रतिष्ठा हुई, इसलिए उन्हें ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया। मम्मट की कृति अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में काव्य प्रकाश मम्मट की सर्वोत्कृष्ट कृति मानी जाती है, जिसमें समग्र काव्य तत्वों का समावेश किया गया है। शुद्ध शक्ति के विषय में इनका एक अन्य ग्रंथ भी मिलता है जिसका नाम शब्द व्यापार विचार है। इस ग्रंथ का विषय प्रायः काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास से गतार्थ हो जाता है। भामा का शब्दार्थौ सहितौ काव्यम वाला काव्य लक्षण काव्य प्रकाश में अधिक विशद परिष्कृत तथा प्रांजल मालूम पड़ता है। भामा व दंडी ने न शब्द शक्तियों का विवेचन किया है और न रस व ध्वनि का ही प्रतिपादन किया, इसलिए वे आज अलंकार शास्त्र की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते और विषय प्रतिपादन की दृष्टि से अपूर्ण हैं। मम्मट ने भामह व दंडी की इस कमी को समझा और अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश में इन सब विषयों का समावेश किया। यह ग्रंथ 3 अंशों में विभक्त है, कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण। कारिका व वृत्ति के कर्ता एक ही है। कारिकाएं स्वयं मम्मट विरचित है और वृत्ति मात्र भी जिसमें कारिका या सूत्रों की व्याख्या विषय के विशद विवेचन के लिए है। उदाहरण स्वयं मम्मट के नहीं है, वे अन्य काव्य ग्रंथों से लिए गए हैं। कहीं कहीं भरत के सूत्रों का भी समावेश किया गया है, यथा विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति इति। पर जहाँ भी भरत के नाट्य शास्त्र से सूत्र लिए गए हैं वहाँ उक्तम ही भरतेन कहकर उनका निर्देश भी किया गया है। कारिका तथा वृत्ति विषयक विवाद। काव्य प्रकाश के कारिका तथा वृत्ति के विषय में बहुत से विद्वानों का मत एक नहीं है। कुछ लोग कारिका तथा वृत्ति दोनों के निर्माता पृथक पृथक मानते हैं। ये लोग कारिका भाग के निर्माता भरत को मानते हैं और वृत्ति भाग मम्मट द्वारा विरचित मानते हैं। यह मत वंगदेशीय विद्वानों का है, जिनमें साहित्य कौमुदी के टीकाकार श्री विद्याभूषण व काव्य प्रकाश के आदर्श टीकाकार श्री माहेश्वर। विद्याभूषण ने अपनी माहेश्वर हैं। विद्याभूषण ने अपनी साहित्य कौमुदी में दो बार इस बात का उल्लेख किया है। मम्मटाद्युक्तिमाश्रित्य मिताम साहित्य कौमुदीम वृत्तिम भरत सूत्राणाम श्री विद्याभूषणो व्यघात। इसमें विद्याभूषण ने काव्य प्रकाश के सूत्रों को भरत सूत्र कहा है। दूसरी जगह उन्होंने फिर लिखा है सूत्राणां भरतं मुनीश वर्णितानां वृत्तीनां मित वपुषां कृतौ ममास्याम। इसी प्रकार काव्य प्रकाश के आदर्श व्याख्या के निर्माता माहेश्वर भट्टाचार्य ने भी वृत्ति भाग को ही मम्मट की कृति माना है, कारिका भरत निर्मित मानी है। उन्होंने ग्रंथकृत मराम ऋषति इत्यादि उदाहरण देते हुए अपनी आदर्श टीका में लिखा है, ग्रंथ कृच्छात्र कारिका कृत भरत मुनिरेव तदीय सहिता मायासो कारिकाणाम दर्शनात् न तो वृत्ति कृदेव कारिका कृत पराम ऋषति इत्यादिषु सर्वत्र नाम योगोचित प्रथम पुरुष निर्देश स्वर सात ग्रंथास्मद योगोचित चितोत्तम पुरुष एव निर्दिश्येत। इससे प्रतीत होता है कि ग्रंथकार मम्मट जिन कारिकाओं की व्याख्या करने जा रहे हैं उनका बनाने वाला कोई भिन्न भरत मुनि है, जिसके लिए पराम ऋषति या प्रथम पुरुष का प्रयोग किया है। अन्यथा यदि वे अपनी बनाई हुई कारिका की वृत्ति लिखते तो प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं करते। इससे यही सिद्ध होता है कि कारिका मम्मट की न होकर भरत की है। कारिका तथा वृत्ति भाग के भिन्न कर्तृत्व खंडन। पूर्व पक्षियों में कारिकाकार तथा वृत्तिकार को भिन्न सिद्ध करने के लिए जो युक्तियां प्रस्तुत की हैं, वे विचार करने पर निस्तार प्रतीत होती हैं। काव्य प्रकाश के आरंभ में आए हुए समुचितेष्ट देवताम ग्रंथकृत पराम ऋषति इस प्रथम पुरुष के प्रयोग के आधार पर सूत्र या कारिका भाग को वृत्तिकार से भिन्न की कृति सिद्ध करने का जो उपक्रम किया गया है वह उपहास्यास्पद ही है, क्योंकि ग्रंथों में इस प्रकार के अवसरों पर अपने लिए प्रथम पुरुष के प्रयोग की शैली तो संस्कृत साहित्य की बहुत समाहत तथा बहुत प्रचलित सामान्य शैली है। अधिकांश लोग ऐसे प्रसंगों में प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करते हैं, जैसे साहित्य दर्पणकार कविराज विश्वनाथ ने इसी प्रकार का प्रयोग कर वाग देवताया सामुख्य माद्यते लिखा है। नागेश कृते सुधी में नागेश ने भी प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया है। संस्कृत साहित्य के ग्रंथकारों की तो यह एक अलंकृत शैली है। आचार्य कुंतक ने इसे पुरुष वैचित्र प्रयुक्त वक्रत्व कहा है। पुरुष वैचित्र विहितम वक्रत्वम विद्यते यत्र प्रत्यक्ता परभाव विपर्यासम प्रयुञ्जते कवयः काव्य वैचित्र्यार्थ युष्मदी अस्मदी वा प्रयोक्तव्ये प्रातिपादिक मात्रम निबध्नन्ति यथा अस्मद् भाग्य विपर्यादि परम देवो न जानाति तम अत्र त्वं न जानासीति वक्तव्ये वैचित्र्याय देवो न जानाति इत्युक्तम्। अर्थात पुरुष वैचित्र्य वक्रत्वम वहाँ होता है जहाँ प्रथम पुरुष का माध्यम अथवा उत्तम पुरुष रूप अन्य के साथ विपर्याय का कवि लोग प्रयोग करते हैं। तात्पर्य यह है कि काव्य के वैचित्र के लिए युष्मद शब्द अथवा अस्मद शब्द के प्रयोग करने के स्थान पर प्रातिपदिक मात्र का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि आप कोष्ठक रावण कोष्ठक बंद उस कोष्ठक लोक प्रसिद्ध रामचंद्र कोष्ठक बंद को नहीं जानते हैं, कोष्ठक यह अभिमानवश कहते हैं कोष्ठक बंद तो वह हमारे कोष्ठक लंका वासियों के कोष्ठक बंद दुर्भाग्य से ही है, अर्थात हमारे दुर्भाग्य का सूचक है। यहाँ त्वम न जानासी इसके स्थान पर देवो न जानाती यह प्रथम पुरुष प्रातिपदिक मात्र का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार व्यक्ति विवेककार महीभट्ट ने भी इसे गुण ही माना है। उनका कहना है कि यस्तु क्वचित कवि भी प्रयुज्यमानो दृश्यते स कर्तृत्व व्यत्यासो नाम गुण एव न दोषः। कहीं कहीं कवियों के द्वारा प्रयुक्त यह कर्तृत्व त्यास नाम प्रक्रम भेद भी गुण ही होता है। यदाह जैसे कि वही कहा भी है प्रगतम अपि यत्र हित्वा कर्तृत्वम युष्मद् स्मदर्थस्य चारुत्वा यान्मन्नारोप्येत गुणः स तु न दोषः। अतः इन सब प्रमाणों के आधारों पर यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि वृत्ति तथा कारिका भाग के कर्ता एक ही हैं। यदि मम्मट केवल वृत्ति भाग के ही रचयिता होते तो अपने वृत्ति ग्रंथ के आरंभ में अवश्य मंगलाचरण करते, यह सब नहीं किया। अतः मूल का मंगलाचरण ही वृत्ति भाग का भी मंगलाचरण है, इसलिए दोनों भागों को मम्मटाचार्य की ही कृति मानने में कोई आपत्ति नहीं है। काव्य प्रकाश के कर्ता के रूप में साधारणतः मम्मट ही प्रसिद्ध हैं, किंतु संपूर्ण ग्रंथ निर्माता वे नहीं हैं। इसमें मम्मट के अतिरिक्त कश्मीर के एक दूसरे विद्वान का भी इसके समाप्ति करने में हाथ है। दूसरे विद्वान का नाम अल्लट है। अधिकांश टीकाकारों का यह भी मत है कि काव्य प्रकाश के अंत में एक श्लोक दिया गया है जिससे इस ग्रंथ की समन्वयात्मक रचना प्रतीत होती है। इतेश मार्गो विदुषाम विभिन्नोप्यभिन्न रूपः प्रतिभासते यत् न तद्विचित्रम् यदमुत्र सम्यग् विनिर्मिता संघटनैव हेतुः। काव्य प्रकाश के प्राचीन टीकाकार माणिक्य चंद्र ने भी इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है, अथ चायम ग्रंथो अन्येनारब्धो अपरेण च समापित इति द्विखंडोपि संघटनावशाद खंडायते। तात्पर्य यह है कि किसी कारणवश मम्मटाचार्य इस ग्रंथ को समाप्त न कर सके, तब दूसरे विद्वान ने इसे पूर्ण किया। परंतु टीकाकारों ने यह स्पष्ट निर्देश नहीं किया है कि कितना अंश मम्मटाचार्य का है और कितना अंश की पूर्ति दूसरे विद्वान ने की है, और वह दूसरा विद्वान कौन है जिसने शेष भाग की पूर्ति की है। इन दोनों बातों का स्पष्ट संकेत राज नक आनंद की निदर्शना टीका में मिलता है, जो इस प्रकार है, कृतः मम्मटाचार्य वर्यैः परिकरावधि ग्रंथ संपूरितः शेषो विधाया लट सूरिणा। स्पष्ट है कि मम्मटाचार्य ने परिकर अलंकार पर्यंत ही काव्य प्रकाश ग्रंथ की रचना की है, उसके बाद ग्रंथ का अवशिष्ट अंश अल्लट नाम के विद्वान ने पूर्ण किया। इसी प्रकार की घटना कादंबरी ग्रंथ के विषय में भी हुई है। बाणभट्ट कादंबरी के केवल पूर्वार्ध भाग की ही रचना कर सके थे, उसके बाद उत्तरार्ध भाग की रचना उनके सुयोग्य पुत्र पुलिंद भट्ट ने की थी। इसी प्रकार मम्मटाचार्य के इस काव्य प्रकाश की समाप्ति भी अल्लट या अलग सूरी ने की। इस ग्रंथ में 10 उल्लास है जिनमें क्रमशः 1 काव्य स्वरूप, 2 शब्द शक्ति विवेचन, 3 शब्दार्थ व्यंजकता का विवेचन, 4 रस व ध्वनि भेदों का वर्णन, 5 व्यंजना स्थापना, 6 शब्दार्थ चित्र निरूपण, 7 दोषों का व्याख्यान, 8 गुण विवेचन, 9 शब्दालंकार निर्णय, 10 अर्थालंकार निर्णय। इन 10 उल्लासों में प्रायः काव्य के सभी तत्वों का समावेश हो जाता है। काव्य प्रकाश की टीका संपत्ति। टीका संपत्ति की दृष्टि से काव्य प्रकाश एक सौभाग्यशाली ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता को छोड़कर संस्कृत साहित्य में शायद ही कोई दूसरा ग्रंथ हो जिस पर इतनी टीका लिखी गई हो। इसमें इसकी दुरूहता ही कारण है। प्राचीन आलंकारिकों में भामह, दंडी, वामन, भोज आदि के ग्रंथ प्रसाद गुण मंडित प्रांजल प्रायः सूक्ष्म विवेचन रहित थे। वे अपने प्रकृति विषय के प्रतिपादन में समर्थ थे, साहित्य के केवल शोभादायक बाह्य तत्वों के प्रतिपादन में निर्विवाद उनका उत्कर्ष था। मम्मट के बाद भी पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर धनी प्रस्थान का एक प्रौढ़ तथा उत्कृष्ट ग्रंथ है। इसमें संदेह नहीं है कि पंडित राज जगन्नाथ ने प्रायः सभी विषयों को अपनी प्रौढ़ प्रतिभा से प्रकाशित किया है। सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुसंधान पूर्वक पदार्थों का प्रतिपादन किया है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। केवल एक ही दोष है, वह नव्य न्याय की शैली का अनुसरण। वस्तुतः यह दोष भी ग्रंथकार पंडित राज का अपना दोष नहीं है, यह तो उस वाद युग का दोष या गुण है जिसके बिना पांडित्य का रथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। फिर दूसरा दायित्व पंडित राज पर यह था कि साहित्य के क्षेत्र में बढ़ती हुई निर्गलता का नियंत्रण करना था। इसके लिए ही शक्त परिमार्जित व नपितुली भाषा की आवश्यकता थी। अतः उस युग की परिस्थिति को देखते हुए पंडित राज का यह दोष न होकर गुण या भूषण ही कहना चाहिए। मम्मटाचार्य का यह काव्य प्रकाश तो सूक्ष्म विषय की विवेचना में निसंदेह उत्कृष्ट है, परंतु किसी किसी अंश में यह काफी जटिल भी हो गया है, जिसका अभिप्राय सामान्य तो क्या प्रौढ़ पंडित भी सहसा अवगत नहीं कर पाते। टीकाकारों का भी परस्पर किसी अंश विशेष में मतभेद मालूम पड़ता है। एक टीकाकार यदि किसी पंक्ति का एक अर्थ करता है तो दूसरा टीकाकार कुछ दूसरा ही अर्थ कर देता है। यही कारण है कि इसकी टीकाओं की प्रचुरता का साहित्य के क्षेत्र में काव्य प्रकाश ही सबसे लोकप्रिय ग्रंथ रहा। इस पर टीका लिखना पंडित की कसौटी समझा जाता था, अतः पंडित मंडली में इसी ग्रंथ का अध्ययन व अध्यापन होता था। साहित्य का पंडित या साहित्य का विद्यार्थी काव्य प्रकाश पर अपनी पूर्ण प्रतिभा का व्यय कर प्रति पंक्ति के प्रतिपद का पदकृत्य करने में ही अपना सौभाग्य समझता था। काव्य प्रकाश के विषय में प्रसिद्ध है कि उसकी टीकाएं घर घर में विद्यमान है, किंतु यह ग्रंथ आज भी वैसा ही दुरूह बना हुआ है। काव्य प्रकाशस्य कृता गृहे गृहे संति टीका तथा पेश ग्रंथस तथैव दुर्बोध। करीब इसकी उस 70 टीकाएं हैं जिनमें माणिक्य चंद्र, सोमेश्वर, विश्वनाथ, कवि चक्रवर्ती, प्रदीपकार, सुधा सागरकार, माहेश्वर इत्यादि प्राचीन टीकाकारों की टीकाएं प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार काव्य प्रकाश पर 12वें शताब्दी से लेकर आज तक संस्कृत व हिंदी में कुछ न कुछ टीका टिप्पणी आदि शोध कार्य चल ही रहा है। वामनाचार्य झलकी कर कि संस्कृत टीका वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित टीका है, इसमें सभी टीकाओं का संग्रह है। इसी तरह आचार्य विश्वेश्वर की काव्य प्रकाश दीपिका टीका भी सुंदर है, जिसमें पूर्व टीकाओं के सभी सारगर्भित अंश संग्रहित हैं। मम्मट का जन्म स्थान। काव्य प्रकाश की सुधा सागर टीका के निर्माता भीमसेन ने मम्मट के परिचय के रूप में कुछ पद्य लिखे हैं। उनसे यह प्रतीत होता है कि मम्मट कश्मीर देशीय जय्यट के पुत्र थे। इन्होंने वाराणसी में आकर विद्या अध्ययन किया। पतंजलि प्रणीत महाभाष्य के टीकाकार कैयट तथा चतुर्वेद भाष्यकार उवट दोनों मम्मट के छोटे भाई थे। इस भाव का वर्णन भीमसेन ने अपने जिन श्लोकों में किया है वे इस प्रकार हैं। शब्द ब्रह्म सनातनम न विदितम शास्त्र क्वचिद केनचित तदैवी ही सरस्वती स्वयं भूत काश्मीर देशे पुमान श्रीमज्जयट गेहिनी सुजठराज जन्माप्य युगमानुज श्रीमन मम्मट संज्ञाशित तनुम सारस्वतीम सूचयन मर्यादाम कील पालयन शिवपुरीम गत्वा प्रपढ़्या दरात शास्त्रम सर्वजनोपकार रसिकः साहित्य सूत्रम व्यघात तत्वृत्तिम च विरच गूढ़म करोत काव्य प्रकाशम स्फुटम वैदग्ध्यैक निदानम मर्थीषु चतुर्वर्ग प्रदम सेवनात् कस्तस्य स्तुतिमाचरेत कविरहो को वा गुणान् वेदितुम् शक्तः स्यात् किल मम्मटस्य भुवने वाग्देवता रूपिणः श्रीमान् कैयट अव्वटो यवरजौ यच्छान्नतामागतौ भाष्याब्धि निगमम् यथा क्रम मनुव्याख्याय सिद्धिम् गतौ। इस विवरण के अनुसार मम्मट का जन्म जय्यट गेहिनी के सुजठर से हुआ था, अर्थात ये जय्यट के पुत्र थे और श्रीमान कैयट और अव्वट इनके छोटे भाई थे, जिन्होंने महाभाष्य तथा वेदों पर व्याख्या लिखी थी। इस प्रकार मम्मट के रूप में स्वयं सरस्वती देवी ने कश्मीर देश में पुरुष के रूप में अवतार लिया था और साहित्य शास्त्र पर सूत्रों का निर्माण कर उस पर स्वयं काव्यवृत्ति की रचना की थी। किंच काव्य प्रकाश के पंचमोल्लास में रुचिंग गरु इस वाक्य के पदों के परिवर्तन से चिंक इस तरह की असभ्यार्थ की प्रतीति होती है, अतः अनिता विधानवादी को भी व्यंजनावृत्ति माननी ही पड़ेगी। इस पर व्याख्याकार विश्वनाथ कविराज की जो टिप्पणी है उसे भी यही सिद्ध होता है। भाषा नाम अश्लीलार्थ बोधकम होता है कि मम्मट की जन्मभूमि कश्मीर ही है। चिंग पदम कश्मीरादि भाषाणाम अश्लीलार्थ बोधकम् इति विश्वनाथः। कश्मीरी पंडितों की परंपरागत प्रसिद्धि के अनुसार मम्मट नैषधीय चरित महाकाव्य के रचयिता महाकवि श्री हर्ष के मामा माने जाते हैं। यह किंवदंती इस प्रकार है कि श्री हर्ष जब नैषधीय चरित महाकाव्य की रचना कर चुके तब उन्हें आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वे प्रफुल्लित होकर एकदम अपनी कृति की कुशलता की कामना के लिए अपने मामा मम्मट के घर जाकर अपने महाकाव्य नैषधीय चरित को अवलोकनार्थ मम्मट के सामने रख दिया। उन्हें आशा थी कि उनके मामा मम्मट इस उत्कृष्ट कृति पर कुछ शुभाशंसन अवश्य करेंगे। जब मम्मट ने अपनी सरसरी नजर से नैषधीय चरित का अवलोकन किया तब बहुत खेद प्रकट किया कि काव्य प्रकाश के सप्तम उल्लास में दोषों का वर्णन है। उनके उदाहरण के लिए उनको जगह जगह से दोषों का उदाहरण ढूंढना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि सप्तम उल्लास के बनने से पहले तुम मुझे यह पुस्तक दे देते तो हमें अन्यत्र परिश्रम नहीं करना पड़ता। सारे दोषों के उदाहरण हमें यही मिल जाते, जैसे निम्नलिखित श्लोक में, तव वर्तमनि वर्तताम शिवम पुनरस्तु त्वरितम समागमः अपि साधय साधयेप्सितम स्मरणीया समये वयम वयः। हे वयराजहंस, आपका मार्ग मंगलकारी हो और आपका पुनः समागम शीघ्र हो। जाइए, कार्य को कीजिए और कार्यकाल में मेरा स्मरण कीजिए। यह प्रकृत अर्थ यहाँ थोड़े से उलट फेर से तब वर्तम निवर्तताम शिवम, तुम्हारा रास्ता अमंगलकारी हो, स गमह त्वरितम मा अस्तु, पुनः जल्दी यहाँ आना न हो इत्यादि विरुद्ध मतिकृत दोष से युक्त है। आगे साधय इत्यादि पद अमंगल रूप अश्लील दोष से भी दूषित है, अतः दोष प्रचुर यह आपका काव्य है। वैसे भी मम्मट काव्य में अपने इस दोष दर्शन के लिए बहुत बदनाम है। वे कालिदास जैसे महाकवियों की कृति पर भी लांछन लगाने में नहीं चुके, इसलिए इनको यवन कहा गया। काव्य प्रकाशो यवनों काव्यालिक व कुलांगना इत्यादि। मम्मट का समय, मम्मट का समय निर्धारण करने में अन्य कवियों व विद्वानों की तरह कठिनाई नहीं है। इन्होंने एकादश शतक के पूर्वार्ध में विद्यमान महामहेश्वराचार्य श्री अभिनव गुप्त के मत का सार संग्रहित किया है और काव्य प्रकाश में अनेक स्थलों पर पद्मगुप्त परिमल के काव्य से उदाहरण दिए हैं। एक श्लोक में मम्मट ने धराधीश श्री भोजराज की दानशीलता का वर्णन किया है, अतः भोजराज के बाद एकादश शताब्दी के उत्तरार्ध में मम्मट का समय निश्चित होता है। उधर इनके ग्रंथ काव्य प्रकाश के प्रथम टीकाकार माणिक्य चंद्र सूरी ने संकेत नामक टीका की रचना 1160 ईस्वी में की है। फलतः इनका समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मानना युक्त है। अलंकार शास्त्र के संप्रदाय, अलंकार शास्त्र के अध्ययन व अनुशीलन से यह भली भांति मालूम हो जाता है कि उसमें अनेक संप्रदाय विद्यमान थे। अलंकारिकों के सामने प्रधान विषय था काव्य की आत्मा का विवेचन, वह कौन सा तत्व है जिसकी सत्ता रहने पर काव्य में काव्यत्व विद्यमान रहता है, वह कौन सा पदार्थ है जो काव्य के अंगों में सबसे अधिक उपादेय है और महत्वपूर्ण है। इसी प्रश्न के उत्तर में अनेक संप्रदायों का उदय हुआ। कुछ लोग अलंकार को ही काव्य का प्राण मानते थे, कुछ लोग गुण या रीति को, दूसरे लोग ध्वनि को काव्य सर्वस्व मानते हैं। इस प्रकार काव्य की आत्मा समीक्षा में मतभेद होने के कारण भिन्न भिन्न शताब्दियों में नए नए संप्रदायों की उत्पत्ति होती गई। अलंकार सर्वस्व के टीकाकार समुद्र बंध ने इन विभिन्न संप्रदायों के उदय का जो कारण बतलाया है वह बहुत ही युक्त प्रतीत होता है। यह विशिष्ट शब्दार्थ काव्यम तयोश वासिष्ठ्यम धर्म मुखेन व्यापार सुखेन व्यंग मुखेन वेति त्रय पक्षा आद्येपि अलंकारतो गुणतो वेति द्वैविध्यम द्वितीयेपि भणीति वैचित्रेण भोग कृत्वेन वेति द्वैविध्यम इति पंचसु पक्षेषु आद्यः उद्भटादि विरंकी कृतः द्वितीयो वामनेन तृतीयो वक्रोक्ति जीवित कारेण चतुर्थो भट्ट नायकेन पंचम आनंदवर्धन चारेण। उनका कहना है कि विशिष्ट शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। शब्द और अर्थ की यह विशिष्टता तीन प्रकार से संभव है, एक धर्म से, दो व्यापार से, तीन व्यंग से। धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य और दो अनित्य। अनित्य धर्म की सत्ता काव्य में उतनी अपेक्षित नहीं होती जितनी नित्य धर्म की। अनित्य धर्म है अलंकार और नित्य धर्म का नाम है गुण। इस प्रकार धर्म मूलक वशिष्ठता को प्रतिपादन करने वाले दो संप्रदाय हुए, एक अलंकार संप्रदाय, दो रीति या गुण संप्रदाय। व्यापार मूलक वैशिष्ट भी दो प्रकार का होता है, एक वक्रोक्ति और दो भोजकत्व। वक्रोक्ति उक्ति वैचित्र का ही दूसरा नाम है, और इस वक्रोक्ति के द्वारा काव्य में चमत्कार मानने वाले आचार्य हैं कुंतक, अतः उनका मत वक्रोक्ति संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। भोजकत्व व्यापार की कल्पना रस निरूपण के प्रसंग में भट्ट नायक ने की है, परंतु इसे अलग न मानकर आचार्य भरत के रस संप्रदाय के भीतर ही अंतर्भुक्त मानना उचित है। शब्दार्थ में व्यंग मूलक वैशिष्ट्य मानने वाले आचार्य आनंद वर्धन है, जिन्होंने ध्वनि को उत्तम काव्य स्वीकार किया है। आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक के आरंभ में ध्वनि विरोधी तीन मतों का उल्लेख किया है, जो उनसे प्राचीन है और काव्य में ध्वनि की स्वतंत्र सत्ता मानने के विरोधी है। इन तीनों संप्रदायों के नाम इस प्रकार हैं: एक अभाववादी, दो भक्तिवादी, तीन अनिर्वचनीयतावादी। आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक की पहली कारिका में इन तीनों वादों का निर्देश करते हुए सहृदय जनों के हृदय में प्रकाशमान ध्वनि तत्व का मिथ्या प्रवाद करने वाले निराकरण के लिए ही यह हमारा प्रयास है कहा है, जिससे कि सहृदयों की मानसिक चिंता दूर हो। इसी अभिप्राय को उन्होंने श्लोक के अंतिम पाद में अभिव्यक्त किया है। तेन ब्रूमह सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। उक्त पद का संक्षेप में रहस्योद्घाटन करते हुए अभिनव गुप्ताचार्य पाद ने इन तीन ध्वन्य भाववादियों को क्रमशः भ्रांत, संदिग्ध तथा अज्ञ माना है, क्योंकि काव्य में जो बिल्कुल भी ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं करते वे देहात्मवादी चार्वाक के समान हैं। जैसे चार्वाक दर्शन देह से पृथक आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं करता है, इसी प्रकार ये भी ध्वन्य भाववादी भी काव्य में आत्मभूत ध्वनि की सत्ता नहीं मानते हैं, अतः ये विपर्य ज्ञान युक्त हैं, अर्थात भ्रांत हैं। दूसरे भक्तिवादी यह तो जानते हैं कि वाच्यातिरिक्त भी कोई अर्थ है, परंतु अभिधा व लक्षणा व्यापार से भी अतिरिक्त कोई व्यापार है या नहीं, इस विषय के संदेह से मुक्त नहीं है, अतः ये संदिग्ध हैं। अंतिम अनिर्वचनीयवादी यद्यपि भ्रांत व संदिग्ध नहीं है, ये लोग ध्वनि के स्वरूप से अच्छी तरह परिचित भी हैं, फिर भी ध्वनि लक्षण नहीं बना सकते, अतः इनमें अज्ञान की प्रधानता है। इस प्रकार ध्वनि के विषय में जब लोगों में अनेक प्रकार का विपरीत ज्ञान या विरोध है, तो सहृदयों के संतोष के लिए ध्वनि का विवेचन करना परमावश्यक है। इन सब विरोधों के परिहार के लिए तथा साहित्य जगत में ध्वनि की स्वतंत्र सत्ता हेतु आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक की रचना की। यही से ध्वनि संप्रदाय की पुनः स्थापना हुई। छठा संप्रदाय औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। इनका उदय इन टीकाकारों के बाद में करीब एकादश शती के उत्तरार्ध में हुआ, अतः अलंकार सर्वस्व की टीका में इस संप्रदाय का उल्लेख नहीं है। संस्कृत आलोचना शास्त्र के ये मुख्यतः छह संप्रदाय हैं: रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय भामह, रीति संप्रदाय वामन, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। रस संप्रदाय, रस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में सोम रस के अर्थ में हुआ है, दधानह कलशे रसम। तैत्तिरीय उपनिषद में पुनः आनंद के अर्थ में भी इसका उल्लेख हुआ है, रसो वै सह रस ह्ये वायम लब्धावनंदी भवति। इस प्रकार वैदिक साहित्य में रस के विषय में यत्र तत्र किंचित चर्चा है, इधर लौकिक साहित्य में भी सर्वप्रथम रसों का वर्णन हमें आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में मिलता है, रसः श्रृंगार करुण रौद्र वीर भयानक ही। श्रृंगार आदि आठ रसों का वर्णन यहाँ मिलता है, वैसे इस आदि काव्य को रस का ही विवर्त या परिणाम माना जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं है। महाकवि कालिदास की यह युक्ति भी इस बात को सूतराम पुष्ट करती है, निषाद विद्या जदर्शनोत्थ श्लोक तुमा पद्यति अस्य शोकः। व्याघ के द्वारा क्रौंच पक्षी के वध को जब मुनि ने देखा तो वे बहुत दुखी हुए। वही हृदयस्थ मुनि का शोक श्लोक में परिणत हो गया। अतः यह मानना पड़ता है कि आदि काव्य का उदय करुड़ रस से ही हुआ, इसलिए रामायण करुड़ रस प्रधान आदि काव्य है। इसको आनंद वर्धनाचार्य ने ध्वन्यालोक के चतुर्थ उद्योत में इस प्रकार कहा है, रामायणे ही करुणो रस स्वयं आदि कविना सूत्रित शोक श्लोकत्वमागत इत्येवं वादिना, और महाभारत में शांत रस को ही मुख्यतः विवक्षा का विषय माना है। तीलों में तेल की तरह, अंगनाओं में लावण्य की तरह यह रस भी महाकवियों के महाकाव्यों में व्याप्त है। इसका शास्त्रीय विवेचन करने का श्रेय भरत को है। भरत मुनि ही इस संप्रदाय के प्रतिष्ठाता माने जाते हैं और उनका नाट्य शास्त्र रस सिद्धांत का प्रतिपादक सर्व प्राचीन ग्रंथ है। भरत के नाट्य शास्त्र को ललित कलाओं का विश्वकोश कहना चाहिए। नाट्य विषय का ही नहीं प्रत्युत आलोचना शास्त्र का, छंद शास्त्र का, संगीत का तथा अभिनय का भी यह आदि तथा प्रौढ़ ग्रंथ है। इसकी लोकप्रियता का पता इसके भाष्यकारों के नाम से भी चल सकता है। इसके 9 भाष्यकार हैं, जिनका नाम नीचे दिया जाता है। 1 उद्भट्ट, 2 लोल्लट, 3 शंकुक, 4 भट्ट नायक, 5 राहुल, 6 भट्ट यंत्र, 7 अभिनव गुप्त, 8 कीर्तिधर, 9 मातृगुप्त। इन सब में अभिनव गुप्त की प्रख्यात व्याख्या अभिनव भारती ही उपलब्ध है और इसी में उल्लिखित होने से अन्य टीकाकारों के अस्तित्व का पता चलता है। इन टीकाकारों में लोल्लट, शंकुक तथा भट्ट नायक ने भरत के रस सूत्र की विभिन्न व्याख्या की है, जिसका निर्देश अभिनव भारती में बहुशः किया गया है। रस संप्रदाय के अनुसार काव्य में रस ही एकमात्र मुख्य तत्व है। भरत मुनि ने नाटकीय रस का ही निरूपण किया है, इसलिए रस को नाट्य रस की संज्ञा दी है। पिछले आलंकारिकों ने इसे श्रव्य काव्य का भी महनीय तत्व माना है। रस का उन्मेष ही नाट्य का तथा काव्य का चरम लक्ष्य है। इस तात्पर्य की सिद्धि के अभाव में काव्य निरस फीका तथा उद्वेग कर होता है। इसके उन्मीलन के निमित्त स्थायी तथा व्यभिचारी भाव, विभाव तथा अनुभव का भी विश्लेषण बड़ी सूक्ष्मता के साथ यहाँ किया गया है। रस की संख्या के विषय में भी मतभेद है। इन 8 रसों की सत्ता के विषय में किसी की भी विमति नहीं है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स तथा अद्भुत शांत रस नवम रस है, जिसकी काव्य तथा नाट्य में सत्ता के विषय में आचार्यों में काफी मतभेद है। धनंजय शांत रस को नाट्य में निषेध करते हैं, परंतु अभिनव गुप्त नाट्य तथा श्रव्य काव्य दोनों में इसकी सत्ता मानते हैं। रुद्रट ने पेयान नामक रस को, विश्वनाथ कविराज ने वात्सल्य को, गौणी वैष्णव ने मधुर रस को इस श्रेणी में जोड़कर रसों की संख्या को बहुत ही बढ़ा दिया है। साहित्य में रसमत का सर्वतोभावेन प्राधान्य है। ध्वनिवादी आचार्यों ने भी ध्वनि के विविध प्रकारों में रस ध्वनि को ही मुख्य तथा काव्य की आत्मा माना है। ध्वनि मुख्यतया 3 प्रकार की होती है, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि तथा रस ध्वनि। इन तीनों में अंतिम मुख्यतम है। भोजराज भी समस्त वांग्मय को 3 भागों में बांटते हैं, स्वभावोक्ति, वाक्रोक्ति, रसोक्ति। इनमें अंतिम का विशेष चमत्कार काव्य में होता है। विश्वनाथ कविराज ने रसात्मक काव्य को काव्य मानकर काव्य में रस के महत्व को स्वीकार किया है। अग्निपुराण की स्पष्ट उक्ति है, वाग वैदग्ध प्रधानेपि रस एवात्र जीवितम। काव्य में वक्रोक्ति से उत्पन्न चमत्कार के मुख्य होने पर भी रस ही उसका प्राण होता है। भरत ने न ही रसाद्रिते कश्चिदर्थ प्रवर्तते का सिद्धांत प्रतिष्ठित कर रस को काव्य का मौलिक तत्व माना है। इस प्रकार रस संप्रदाय के अनेक आचार्य हुए, जिनमें अनेक ध्वनि को भी विशेष महत्वशाली मानने के कारण ध्वनि संप्रदाय के भी अनुयायी हैं। पाश्चात्य मनोविज्ञान के अनुसार रस सिद्धांत की पूर्ण रूपेण व्याख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि भारतीय साहित्य में इसका अपना कुछ अलग ही महत्व है, जिसका संबंध भारतीय दर्शन से है, जो आत्मानंद सहोदर है, चिन्मय तथा प्रकाश स्वरूप है। अतः पाश्चात्य मनोविज्ञान की परिधि से परे की बात है। जब आधुनिक विज्ञान केवल मन तथा उसकी वृत्तियों के विवेचन तक ही सीमित है, तो आत्मस्थानीय रसास्वादजन्य अलौकिक अनुभूति की आशा करना तो दुराशा मात्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि वेदांत दर्शन के अनुसार आनंद तीन प्रकार का होता है, विषयानंद, ब्रह्मानंद, रसानंद। विषयानंद वासना पर अवलंबित है। यह विषय चिंतन से या विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाला लौकिक क्षणिक तथा वासनाओं की मलिनता के कारण सुख दुखादि सांसारिक भाव के द्वंद्व से अभिभूत है, अतः यह सत्व प्रधान आनंद न होकर आनंदाभास है। आनंद की उच्चतम कोटि ब्रह्मानंद है, जिसके अंतर्गत समस्त आनंद सिमट कर एकत्र हो जाते हैं। रसानंद भी करीब करीब इसी आनंद की कोटि में आता है। विषयानंद के लिए जिस प्रकार वासना अपेक्षित है, रसानंद में उस जगह वासना की शुद्धि अपेक्षित है, अर्थात भाव का उदात्तीकरण भाव की अशुद्धि का कारण है, उसका व्यक्ति विशेष से संबंध मेरी यह रति है इत्यादि जो परिमित प्रमाता का संबंध विशेष है वही हीनता तथा अशुद्धि का कारण है। इसी भाव संशोधन के लिए साहित्य शास्त्रियों ने रस निष्पत्ति प्रक्रिया के लिए साधारणीकरण व्यापार की कल्पना की है, जिसकी सहायता से प्रमाता में अपरिमित भाव आ जाता है। वासना विषय विषय दूषित न होकर भी निष्काम भावना या उदत्त भावना से स्वच्छ हो जाती है। इसी दिशा में शनह शनह रत्यादि भाव से जो अज्ञानावरण से परिचिन्न थे, वे व्यंजना व्यापार व साधारणीकरण व्यापार के सहयोग से अपरिचिन्न होते हुए सच्चिदानंद घन स्वरूप रस को प्राप्त कर लेते हैं। इसी रस के विषय में भरत ने लिखा है, न ही रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते।